کہ کیا ہوگا, ہم آپ کے گھر میں جھاڑو دیں گی, برتن مانجیں گی, کسی پرکار چڑھا لیں گی, اب آپ کو نہیں چھوڑیں گی, آپ کے ساتھ رہیں گے. یعنی ہم آپ رہتے نا تو نہیں گرہن کر سکتے. کرنا تو ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے سنسار کو اور سماج کو ہم دیکھ لیں گے. بس ان کو انگیکار کر لیا, تم کو پاترانی کے روپ میں رکھیں گے, نوکرانی کے روپ میں نہیں, برتن مانجنے کے لیے تمہارے گھر میں ہزاروں بات یہ سب نوکرانیاں رہیں گی. جب تم نے ہمارا شرن گرہن کر لیا, سرو دھرمان پرتج, جو سب دھرموں کو چھوڑ کر کے کرشن کا شرن گرہن کرتا ہے اس کو وہ ایک دم اپنا بنا لیتے ہیں, ان کو اپنا بنا لیتے. یہ کامنا نہیں ہے, کام نہیں ہے, یہی پریم ہے. ایسے پرم دیالو ہیں, ایسے کرشن کو چھوڑ کر کے کس کا بھجن کرنے جائیں. پتر ان کو مارنے کے لیے آئی پران سے, اپنے استنوں میں بیس لگا کر کے, اور اس کرشن نے کیا کیا, اس کو ماتا کی, ارے ماتا کا بیس بنا کر کے آئی, بس گرو بندا بند اپنی میا بنا دیا ان کو. ایسا دیالو کون ہوگا؟ اس لیے کرشن ہی پرم تتو ہیں, پریم کی پرتشٹھا کرنے کے لیے جگت میں آئے. اس لیے ہرن تک بھی ان کو دے کر کے پرنے کی بھیک مانگتے ہیں. ندی جمنا کیا کرتی ہے؟ جمنا ندت تدا اپدھاریہ مکند دیتا آورت لکشت منوبھو بھگن ویگا آلنگن ستھت ارم بھجئی مرارے گہنت پاد جگلم کملوپہارا. یہ ندی ہے نا, کنتو ندی کی ادھشٹھاتری دیوی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ندی میں تو پانی ہے, کنتو اس کی ادھشٹھاتری دیوتا ہوتی ہے. جیسے ہم شریر ہیں, شریر کا ادھشٹھاتری دیوتا آتما ہے. پہاڑوں میں بھی پران ہے, اس کا بھی ادھشٹھاتری دیوتا ہے. ہوا میں بھی پون دیو ہیں, پانی کا ادھشٹھاتری دیوتا برون دیو ہیں. اس طرح سے بہت ریسرچ کے بعد میں ہمارے رشیوں نے ان ستیوں کو اپلبدھی کی اور تب اس کا پرچار کیا. یہ سب ایسے پیسے نہیں ہے. ہمارا بھارتیہ سنسکرتی, ویدک سنسکرتی ایک ملیہ کے اوپر میں استھر ہے. اس کے ایک ایک بات ستیہ ہیں, آدمی نہ سمجھے وہ دوسری بات ہے. تو کیا بتلا رہا تھا؟ ندس تدا اپدھار جگیتا, کرشن نے بینو بجائی. اتنا سندر نرالا روپ, مانو سمست وشو کا سارا سوندر سمیٹ کر کرشن کے انگوں میں سما گیا ہے. بینو بجاتے ہی جمنا جی کی دھارا جو نیچے جا رہی تھی لوٹ آئی, اور ادھر والی اوپر والی آ رہی ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ بھرمر بن گیا. نیچے والی نیچے جا نہیں رہی بلکہ اوپر نہیں آ رہی دھارا لوٹ کر, اور اوپر والی آ ہی رہی ہے. اس لیے ایسا پانی گھومنا, کہ اس کو پانی مت سمجھو گھومنے کی. منوبھو بھگن ویگا, منوبھو منے کہتے ہیں کام یا پریم. کرشن کی بنسی کی دھنی سے اور ان کے سندر روپ سے مادھوریہ سے جمنا جی کے اندر میں کرشن کی سیوا کی واسنا جگ اٹھی, اور اتاروں ترنگے اٹھی کرشن کا آلنگن کرنے کے لیے. مانو ان کی ارمی کیا ہے؟ ارمی میں نے وہ بھجائیں ہیں کرشن کو آلنگن کرنے کے لیے یہاں تک آئیں. کنتو کرشن نے ان کے پرتی تنک بھی کام بھاؤ نہیں دکھلایا, تو جھٹ لجت ہو گئی. تو وہ نیچے اتر کر کے ان کے چرنوں میں کملوں کا اپہار دینے لگ گئی. یہ کرشن کا سوندر اور پریم ہے. یہ پانی تک کو بھی, ندی تک کو بھی کرشن کے پرتی پریم ہو گیا. آکاش میں بادل چھا کر کے کرشن جہاں گوچارن کرتے ہیں, سورج کو بادل ڈھک لیتے ہیں اور ان پر سندر سندر کومل اور شیتل جل کی بوندے ان پر گراتے ہیں. پرتھوی گھاس سے بھر جاتی ہے, ان کے چرن ان کے گھاسوں پڑتے ہیں, کہیں پتھریلی نوکیلی یہ سب چیزیں نہیں آتی. کرشن کا پریم دان کرنے کے لیے لتاؤں کو بھی انہوں نے پریم دیا, برچوں کو. برچ اپنی ڈالوں سے پھل پھولوں سے بھر کر کے اور نیچے اتر آتے کرشن کے چرنوں میں اپہار دیتے. ایسا کوئی اوتار نہیں, प्रेम के लिए, इसीलिए इनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक ही तत्व दो बातों के लिए जगत में आते हैं। इनका जन्म इस प्रेम की स्थापना करने के लिए, आत्मधर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए और वर्णाश्रम धर्म तीनों की रक्षा करने के लिए ये धर्म संस्थापना थाय संभव। अब जब ये आए कहां आए? कंस ने अपनी बहन को जेल में बंद कर दिया। विवाह होने जा रहा था, विवाह हो गया था। कंस स्वयं अपने हाथों से रथ हांक रहा था और अपने जमाई और बहन को लेकर के उनके घर में पहुंचाने जा रहा था वसुदेव जी को। जब वह अपने घर से निकला, बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, फूल की वर्षा हो रही थी, सज धज करके दुल्हन देवकी देवी को, उसका वो भाई लगता था, उसको लेकर के पहुंचाने जा रहा था। उसी समय हठात आकाशवाणी हुई, रे कंस, दुष्ट कंस, तू जिसे बड़े सज धज कर और जिसको ले जा करके ले जा रहा अपने रथ पर चला करके, उसी के गर्भ से आठवां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा ध्वंस करेगा। और सुनते ही एकदम नीचे कूद गया, तलवार हाथ पे ली और एक हाथ से देवकी का केश पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के अभी मारू, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैया भी खत्म करूं जो बेटा हो ही नहीं। असुर लोग कैसे होते हैं? आकाशवाणी हुई, उसे डर गया जैसे इससे हमारा वध होगा, किंतु उसको झूठा करने के लिए मारने जा रहा है। यदि वो बात सत्य है, ये आठवें गर्भ से उसका जान हंता जन्म लेगा ही, तो विश्वास करना चाहिए था, तो विश्वास तो कर लिया। अब ये चाहता कि उस विश्वास को भी वो आकाशवाणी को झूठा बनाए, ये असुर लोगों का काम है। विश्वास किया, अर्ध को कुटीन जाए, मुर्गी का आधा भाग मांगा माना और आधा भाग नहीं माना। एक आदमी दो भाई थे, तो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती। कुछ दिनों के बाद में दोनों में लड़ाई हो गई। उसने कहा जैसे मुर्गी दोनों में बांट ली जानी चाहिए। उसने कहा जो मुख्य तरफ में हमारा रहेगा और एक कमी का भी हमारा पीछे की रहेगा। दोनों में झगड़ा लग गया, जिधर से अंडा सोने की देती है वो हमारे तरफ रहेगा और तुम खिलाना मुख तुम्हारे तरफ। और इसी के लिए दोनों में लड़ाई लगा। अंत में किसी तरह से सुलह सपाटा नहीं हुआ। अच्छा, तो हम काट करके विवाह कर लें। और बतलाओ काट करने से क्या होगा? अंडा मिलेगा। उसने सोचा कि पीछे वाला भाग हमको मिलेगा तो हम उसी से अंडा पैदा कर लेंगे। सब दोस्त पीछे वाला लेना है, किंतु ये नहीं जानते हैं काट देने के बाद में मुर्गी मर जाएगी और उसे अंडा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति ये सब संसार वालों की है। तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, उसको चार जैसे इसको मिथ्या बना दे, बस इसको हम और अभी काट दें, ये बच्चा होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा ये बात तो जरूर होगी ही, होकर के रहेगी। क्यों? ईश्वर में विश्वास करते हैं, जरूर होगी। अच्छा, अब थोड़ी सी हमको प्रयत्न करनी चाहिए। कैसे प्रयत्न करना चाहिए? कुछ लोग नौका में सवार होकर के कहीं जा रहे थे। एक नदी थी, चौड़ी थी, उस नाव में करीब करीब 50 आदमी भरे थे। नौका जब चलने लगी आकाश साफ था, क्योंकि जो ही आधी दूर तक पहुंचे इतने में नौ आकाश में मेघ छाए और बड़ी जोर से आंधी चली और उसमें नौका डगमगाने लगी। अब तो सभी डर गए। अब नौका डूबी। उसमें कोई एक संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा कि नौका डूब रही है, भगवान की इच्छा है, इसलिए नदी का पानी लेकर के उनके पास में एक पीतल की बाल्टी थी लेकर के भागना आरंभ किया। अरे महापुरुष, तू क्या कर रहा है? एक तो नौका डूब रही है और तुम ऊपर का पानी और इसमें कर। तो उनको अपने काम से काम ढूंढ से ढूंढ वो पानी जब वहां का भर करके और इसमें डालने लगे। लोगों ने उनको पकड़ने की चेष्टा की, माने नहीं। थोड़ी देर के बाद ही में भगवान की इच्छा से हवा बंद हो गई और नौका एकदम किनारे अब आने वाली थी। और नौका दुगनी शांत हो गया, वातावरण सब ठीक हो गया। तो अभी महापुरुष ने कहा क्या किया, पानी लेकर के नीचे नदी दूसरे से नौके से उली किनार में कहिए, अब भद्रमानुष अब क्या कर रहा है, अब तो नौका आ गई है और ये डूबेगी नहीं, अब तो हवा भी शांत होगी, अभी इस क्या करें। तो यही तो कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा है जो न डूबे इसलिए इसका पानी में थूक रहा हूँ। भगवान जो चाहता, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं तुम लोगों का किसी का नहीं, भगवान की जो इच्छा होगा उसमें करेंगे। इसलिए वसुदेव जी सोच रहे हैं ये जब आकाश पानी है जरूर सत्य होकर रहेगी ही, और थोड़ा सा निमित्त बन जाना है। उन्हें कहा जी भले मानुष क्यों मार रहे हो अपनी बहन को, तुम्हारी बहन है ना, अरे इसका लड़का होगा तो मैं तुझे, यदि लड़की होगी तो तुम्हारे लड़के के साथ में इसकी शादी कर दूंगा, और लड़का होगा तो तुम्हारी लड़की होगी तो हम शादी कर लेंगे। अरे बहन को स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन तो है ना, मत मारो। इसका लड़का होगा तो मैं आठवां लड़का, क्या मैं सभी लड़के तुमको देंगा, जिसकी इच्छा होगी तुमको मार डालना या रखना। अच्छा तो ठीक बात है, इनकी सत्यता पर उनको विश्वास था, लड़का होगा देगा ना, तो हाँ तो ठीक है। अच्छा तो पहले अभी जेल में बंद कर देते हैं, अभी देखते हैं क्या हो गया। ओ, बहुत जल्दी समय हो गया, 5 मिनट का। साथ ही साथ में उन्होंने कहा आठवां लड़का दे देंगे, बस जेल में बंद कर दिया। आठवां लड़का का पहला लड़का हुआ, उन्होंने दे दिया, अरे बहुत अच्छा, अब घर में जाओ। वे प्रसन्न नहीं हुए न कुछ हुआ। अब धीरे धीरे एक एक पुत्र होता गया, उसको छोड़ता गया कि ये आठवां होगा तब देखे। इस समय नारद महाराज जी पहुंच गए, कहिए ये भले मानुष तू क्या कर रहा है, ये सभी बड़े हो जाएंगे, उनकी गिनती भी कोई ठीक नहीं है, यदि 7 पंच से करेगा तो छठा हो जाएगा आठवां, और 1 से करेगा तो 8वां होगा, और 8वां से करेगा तो फिर 7वां हो जाएगा 8वां, इसलिए कोई ठीक नहीं, विष्णु वैसे ही विष्णु है, बहुत भूत आदमी है, उसकी कोई भी ठीक नहीं, ये क्या क्या करेगा, इसलिए ये बड़े होंगे सभी पक्ष लेकर के 8वें का तुम्हें मारेंगे। बस उनके चक में आ गया, क्यों, जब तक ये पाप का घड़ा नहीं भरेगा ये मरेगा नहीं बदमाश, इसलिए जल्दी से पाप का घड़ा भरे। जीवात्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर का ही है, उनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नारद जी का दोष नहीं, उनका कल्याण करने के लिए ऐसा किया। अंत में 8वें गर्भ से पैदा हुए, कहां पर पैदा हुए, कंस के कारागार में, आधी रात के समय में। किंतु जन्म नहीं हुआ, ये मार्के की बात, क्या हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहाँ पर देवकी हितकारी, चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, 16 वर्ष के जैसे, 7 श्रृंगारों से भरे हुए, लंबी लंबी चोटी, और यहाँ पर मुकुट सोने का, कंगन और अच्छी धोती पीताम्बर इत्यादि पहने हुए, शंख चक्र गदा पद में लिए हुए पाए। ऐसा कोई बेटा होता है किसी को 16 वर्ष के जैसे, तो यहाँ पर प्रकट हुए, पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुए, यहाँ पर जन्म लीला नहीं है, प्रकट हो गए, जैसे खम्भ से प्रकट हो गए तो उसको जन्म मानेंगे, इसलिए यहाँ पर जन्म की लीला नहीं, आविर्भाव, भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं, किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते। किंतु ये दिखाना था कि भक्तों की कृपा करने के लिए जन्म की लीला भी कराते हैं, इसलिए यहाँ पर आंशिक रूप में पैदा हुए, ऐश्वर्य के साथ में, कहा देवी के, और साथ ही साथ में उसी समय उसी क्षण में उसी आधी रात में यशोदा जी के गर्भ से पैदा हुए, कैसे, नर बालक के रूप में, ठीक उसी समय में यहाँ पर परिपूर्ण रूप में आए, रसो वैसा हो कृष्ण संग रूप में यशोदा के रूप में आए। ये जो है यहाँ पर यही ब्रजेंद्र नंदन, आराध्य भगवान ब्रजे सतन धाम वृंदावनम रम्या का चितुपासना पदु पदु पर गई जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्। अब इसके व्याख्या दूसरे दिन, आज वहां पर शाम को कथा होगी, तो उस शाम को कृष्ण की लीलाएं, और कल यहाँ पर होना है, कल कृष्ण की दामोदर लीला इत्यादि बड़ी सुंदर मधुर लीलाओं को मैं श्रवण करा करके और फिर अपनी लीला कथा समाप्त। आप लोग इसमें भक्ति को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जो लोग भक्ति को नहीं करेंगे ग्रहण, भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये एकदम ध्रुव निश्चित है। चाहे पृथ्वी बदल जाए किंतु ये सिद्धांत बदल नहीं। कहा यह है, बारी मथे बर हो यघृत, बार मथे बारी मैंने पानी हो यघृत, सिकता के बरते बिनु हरि भजन न भवतरीय। यह सिद्धांत अपेल, इसको ठीक समझें। पड़ोसियावर रामचंद्र जी जो शिशि गौर प्रेमानंदे,
भक्ति में लगे तो उससे भी मन की शांति होगी। एक पॉइंट यहाँ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं विज्ञान के, विज्ञान जो है इतना पीछे है हमारे धर्म के सामने कि जितनी चीजें धर्म में बताई गई है विज्ञान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, हमारे धर्म में माता का स्थान सबसे पहले दिया गया है। हम राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, तुमेव माता पिता तुमेव, हम तुमेव पिता नहीं बोलते, माता का स्थान पहले देते हैं। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने हम देने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस बहुत पीछे है, थोड़ी थोड़ी बातें अभी समझना शुरू किया है साइंस। हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, स्वामी जी ने अभी बताया कि कृष्ण जी की जो शक्ति थी वो राधिका जी थी। वहां भी देखिए जेंडर है मेल फीमेल का। हमारे आपके सबके बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनेल्स है, उसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है माइटोकांड्रिया तक जाती है और एक एक सेल जो है उससे सांस लेता है। अगर माइटोकांड्रिया डिफेक्टिव हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं और मृत्यु हो जाएगी सेल की। तो माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल और हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। देयरफॉर माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द ऑर्गन्स और हमारा आपका शरीर जो है बड़े सारे ऑर्गन से बना हुआ है। देयरफॉर माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ दिस होल बॉडी। हमारे आपके शरीर में जो माइटोकांड्रिया है वो केवल मां से आती है, पिता से नहीं आती। इसलिए जो हमारे घर में बताया गया है मां का स्थान सबसे पहले जो शक्ति हमको मिलती है वो मां से मिलती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है मां के तो हम मां के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। मां क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या पीती है, उसका डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो हमारे घरों में चीजें बताई गई हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। हम जो वैज्ञानिक आज तक काम करते हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, उसको हम रिसर्च बोलते हैं, हम रिसर्च करते हैं। तो ये सत्य है कि जो हमारे घर में बताया गया है वो एब्सोल्यूट नॉलेज, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत प्रयत्न करके चीजें हमको बताया है, इसलिए हमको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आजकल के जो हम लोग हैं उसका हमको कारण चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा क्यों बताया गया है। वो साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, धीरे धीरे साइंस सीख रही है। तो स्वामी जी ने जो बताया है हम उस पर ध्यान दें, अपने जीवन को उस पर चलाएं तो हमको अवश्य सुख और शांति का अनुभव होगा। हम स्वामी जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और मंदिर की ओर से। धन्यवाद स्वामी जी।
इंडिविजुअल की ओर से उनसे भी बच्चों का स्वागत है जो आज मंदिर में पहली बार आए हो, और उनसे निवेदन है कि हर रविवार इसी प्रधानमंत्री में आकर मंदिर के कार्यक्रमों में अपना योगदान दें। धन्यवाद। आदरणीय दोस्तों, मंदिर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें सभी भक्तों और उनके माता पिता का योगदान अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम की सफलता उसी पर निर्भर करती है। आगे आने वाले कुछ कार्यक्रमों में सबसे प्रथम आ रही है जून 6 को गीता पारायण। समझा करके आप सभी को विस्तार पूर्वक समझाएंगे ये गीता पारायण किस प्रकार से होगा। आप सभी जानते हो विष्णु जी इष्ट में Thank you.
I'm going to be
Yeah.
I'm not. Thank you.